ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा की आज की मुरली है बेअभिमान बनाम देही अभिमान। बेअभिमान से क्या नुकसान होता है और देही अभिमानी बनने से क्या फायदे होते हैं, ये भी एक लिस्ट निकल सकती है। बेअभिमान से क्या क्या नुकसान होते हैं और देही अभिमानी बनते हैं तो क्या फायदे होते हैं, तो विचार सागर मंथन कर आज ये बाबा ने होमवर्क दिया है। देह अभिमान में आने से फिर विकारों के वश तो हो ही जाते हैं, क्योंकि सभी विकारों की जड़ है ही देह अभिमान। फिर क्या क्या होता है उसमें, रूसना भी हो जाता है, नशा भी दिखाते हैं, फिर कोई न कोई विकार के वश हो गए और काम विकार के वश हो गए तो पांच मंजिल से जैसे नीचे गिरे तो हड्डी हड्डी टूट जाती है। पर देही अभिमानी बनेंगे तो बाबा कहते हैं तुम्हें वास्तविक जो नशा होना चाहिए वो होगा। तो एक है उल्टा नशा और दूसरा है सीधा नशा। तो देखो शिव बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी है पर कितना निरहंकारी है, ब्रह्मा बाबा भी कितना निरहंकारी है। ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। शिव बाबा भी यही कहते हैं। तो कितने बाबा, दो दो बाबा कितने निरहंकारी है। तो हम बच्चों को अहंकार किस बात का, अगर धन का अहंकार है तो बाबा कहते हैं वो तो सब मिट्टी में मिल जाना है। कोई पद का अहंकार है तो वो भी आज है कल नहीं रहेगा, ये तो सारी दुनिया ही खत्म होनी है, तो किसका अहंकार करे। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर रूप से ये अंतर बताया है और हम बच्चों को प्रेरणा दी है, बच्चे हर वक्त देही अभिमानी होकर रहो। पता तो चली जाता है जो देह अभिमान में होता है उसका व्यवहार कैसा होता है और जो देही अभिमानी होता है उसका व्यवहार कैसा होता है। तो आज बाबा ने पूरा स्पष्ट किया है, सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 14/7/2026 है, मुरली की हेडिंग है मीठे बच्चे याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं, देह अभिमान आया अनेक अशुद्ध संकल्प भी आएंगे, व्यर्थ तो बहुत ही आएंगे और फिर थक जाते हैं, याद की यात्रा हो नहीं पाती है। मीठे बच्चे याद की यात्रा में कभी थकना नहीं, बे अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। ये कोई शारीरिक थकावट की बात नहीं है, मानसिक थकावट। वो तीर्थों पर जाते हैं तो शरीर से थक जाते हैं लेकिन फिर भी उमंग उत्साह बहुत रहता है। अभी अमरनाथ की यात्रा चल रही है लेकिन पता है इतना लंबा सफर है लेकिन जा रहे हैं खुशी से जा रहे हैं, बम बम बोले कह के चढ़ रहे हैं ऊपर, कोई घोड़ों पर चढ़ते हैं कोई डोली पर चढ़ते हैं, लेकिन खुशी होती है, थकते नहीं है। परंतु याद की यात्रा में बच्चे थक जाते जबकि कोई शारीरिक मेहनत भी नहीं देते बाबा, तो क्यों थक जाते हैं, किस बात की थकावट है, व्यर्थ संकल्पों की, तो वो बोझ बन जाते इसलिए थक जाते हैं। तो बाबा कहते देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? और वो संस्कार तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, नहीं तो 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर बिगड़ जाएगी। तो कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? अहंकार है वो तो है, लेकिन आज बाबा ने उत्तर दिया है, अगर किसी में रूठने के संस्कार है, किसने कुछ कह दिया बस कहा क्या छुई मुई हो गए, फिर रूठ गए, फिर आना छोड़ दिया, बाबा को याद करना छोड़ दिया, तो ये रूठने के संस्कार बाबा कहते हैं ये श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ देते हैं। तो कौन से संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाले हैं? उत्तर है, अगर किसी में रूठने के संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी ये उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए। उल्टा नशा, अच्छा नशा तो बहुत अच्छी बात है, बाबा भी नशा चढ़ाते हैं, लेकिन उल्टा नशा, तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, देह अभिमान के वश कभी भी ये उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने तो इतनों को समझाया, मैंने इतनी सेवा की, मैं इतना दूसरों को सुनाता हूँ, तो ये मैंने इतनों को समझाया, मैंने इतनी मदद की, धन की भी अगर मदद करते उसका भी नशा चढ़ जाता है, तुमको पता है मैंने इतना धन दिया, इसके लिए दिया, इसके लिए दिया, तो नशा दिखाते और वर्णन भी करते हैं, इतनी मदद की। देखो बाबा कहते देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी कितना निरहंकारी है। इसलिए सी फादर, शिव बाबा को देखो और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। तो सी फादर माना शिव बाबा को देखो, फॉलो फादर माना ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। इसलिए सी फादर गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने गीत सुना, और जो योग युक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वो इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। हम रात के राही हैं, रात के राही का मतलब अर्थात ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई है, अभी रात से दिन में जा रहे हैं, तो रात के राही थक मत जाना। हम रात के राही अर्थात ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है, आधा कल्प रात का पूरा होता है, भक्ति मार्ग पूरा होता है तो आधा कल्प रात का पूरा होता है, हद का भी दिन और रात होता है, ये फिर है ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है, बाबा दिन में नहीं आते हैं, रात में आते हैं, अंधियारा है ना, 14 होती है और अगले दिन अमावस्या आती है, तो रात में बाबा आते हैं। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधियारा है, प्रभात होने का पहला पूर है, बाबा आया ज्ञान सूर्य प्रगटा, धीरे धीरे प्रकाश आना शुरू होता है, प्रभात होने का पहला पूर है, सवेरा हो रहा है, तो बच्चे जानते हैं। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है आगे तो पैदल जाते थे और बहुत धीरे धीरे, हाँ दिखाते ना कैसे अमरनाथ की यात्रा पर चढ़ रहे हैं, घोड़ों पर चढ़ रहे हैं, कोई डोली पर जा रहे और कोई तो लकड़ी लेकर के, जवान भी लकड़ी लेकर के पैदल पैदल चल रहे हैं। आगे पैदल जाते थे बहुत धीरे धीरे, फिर बीच में मंजिल बनी रहती है, मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है, जाना है अमरनाथ, लेकिन बीच में कुछ न कुछ वो स्थान देते हैं जहाँ पर थोड़ा आराम कर सकते हैं। हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है, पैदल करते थे यात्राएं पर यात्राओं पर जाते थे, बड़ी मेहनत है। अब ये तो बहुत सहज है, याद की यात्रा कितनी सहज है, इसको कहा ही जाता है सहज याद व सहज योग। सिर्फ बाप को याद करना है, थकने का मतलब ही है, अगर थक जाते इस याद की यात्रा में इसका मतलब क्या है, क्योंकि थकने की तो कोई बात ही नहीं है, टांगों से तो चलना नहीं है, पर फिर भी थक जाते इस याद की यात्रा में इसका मतलब ही है देह अभिमानी है, देह अभिमानी है, इसीलिए इस याद की यात्रा में थक जाते हैं। तो थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। हाँ, इसमें कोई शक्य नहीं कि माया के विघ्न तो पड़ेंगे, क्यों थक जाते हैं, क्योंकि माया के विघ्न पड़ते हैं, परंतु इसमें थक नहीं जाना है, वो तूफान तो आएंगे माया के, पर माया के तूफानों से थकना नहीं है। थक जाने से फिर देह अभिमान और भी आ जाता है, थक गया मेरे से तो नहीं होगा, हाँ तो देह अभिमान से, थक जाने से देह अभिमान और भी आ जाता है। तो बाप कहते हैं बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, वो तो छोड़ना नहीं है, उसके लिए छुट्टी है, कितनी छुट्टी है, 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं है, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे, अंत में जब कर्मातीत अवस्था के नजदीक आएंगे तब 8 घंटा देंगे। चाट को बढ़ाते रहो, यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, आते हैं क्लास में दो सामने बैठे हैं, तो जैसे क्लास में आए या देखा योग चल रहा है, तो बाबा कहते हैं यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, सामने बैठे हैं जैसे वो याद दिला रहे कि अभी याद में आके बैठो। जिसको तुम निष्ठा कहते हो, सामने कोई बैठा है और हम योग कर रहे हैं, जिसको तुम निष्ठा कहते हो, बाबा की याद में आकर बैठते हो, इसका मतलब ये नहीं, बाबा की याद में आकर बैठते तो हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर ही याद में बैठना है, खाली यहाँ आए और चलो बाबा की याद में बैठे और बाकी सारा दिन नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर ही याद में बैठना है। ऐसे बहुत हैं जो समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठे, परंतु बाप तो कहते हैं धंधा धोरी करते कहाँ आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो, कहाँ गंगा स्नान आदि करने जाते हैं भक्ति मार्ग में, जहाँ भी यात्रा पर जाते हैं या गंगा स्नान करने जाते हैं तो राम राम जपते जाते हैं ना, राम राम जपते जाते हैं, मतलब वो जिसका दर्शन करने जाते हैं उसका नाम जपते जाते हैं, तो राम राम जपते हैं ना, यहाँ तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। ये बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं, तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में। अब जिसमें हमारा कल्याण है उस पर तो बाबा हमेशा ध्यान खिंचवाते ही रहते हैं, तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है, इसमें तूफान बहुत आएंगे। बाबा हाँ सावधान भी करते हैं, माया के तूफान बहुत आएंगे। अब तूफान कोई वो मिट्टी आदि के नहीं, वो तूफान आता है ना कितनी मिट्टी चारों ओर फैल जाती है, तो वो ये इसमें वो तूफान नहीं आएंगे जो मिट्टी आ जाए। तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं, माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देह अभिमान में आने से क्या क्या होता है, देह अभिमान में आने से धंधा धोरी बच्चे याद आ जाते हैं। तो बाप कहते हैं अब तो ये धंधा धोरी आदि सब खलास हो जाने हैं, जितना तुम अपना महल खड़ा कर रहे हो, इतना सब कुछ जो कर रहे हो, धंधा धोरी बढ़ाते जा रहे, बाबा कहते हैं ये सब खलास हो जाने हैं। तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं है, बहुत बड़ी बात, तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं है। दुनिया में तो इतना धन कमाना है सात पीढ़ी तक चले, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं है, सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं, अभी हम क्या है, अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं। हद का वर्षा बाबा कहते मुर्दाबाद होना है, और बेहद का वर्षा जिंदाबाद होना है। साहूकार लोग तो समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर ये होगा वो होगा, और बाप कहते हैं अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से क्या करना है, दुनिया से बाबा कहते इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो, ये तो कब्रिस्तान है, धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। बहुत बड़ी बात है कि धंधा धोरी और बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी, आबाद हो जाएंगे शिव बाबा की याद में मरेंगे तो। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है, क्या क्या नुकसान होते हैं देह अभिमान में आने से, बाबा कहते बर्बादी होती है। देही अभिमानी बनने से आबादी होती है, जितना याद करेंगे उतना भविष्य 21 जन्म वर्षा पाएंगे, याद ही नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, वो फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा, खाली इस कल्प के लिए नहीं घाटा होगा, कल्प कल्पांतर के लिए घाटा हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है, ख्याल करना चाहिए हम पूरा वर्षा कैसे पाए। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए, धन की लालच नहीं रखनी चाहिए, टू मच में भी नहीं जाना चाहिए। हाँ पेट के लिए क्या चाहिए, ज्यादा तो नहीं चाहिए, पर पेटियां तो जितनी भरते जाओ। तो बाबा कहते हैं टू मच में नहीं जाना चाहिए, कोई देवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है। शिव बाबा को तो बिल्कुल भूल जाते हैं, कई होते ना ज्ञान में आए और ज्ञान में आने के थोड़े समय बाद देवाला मार दिया, तो लोग उनको क्या क्या कहते हैं, अरे तुम ज्ञान में आए ना, तुमने भक्ति छोड़ दी ना, तो इसलिए तुमको देवाला हुआ। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर दोष रखते हैं ज्ञान में आए हैं तब देवाला मारा है, ज्ञान में आए हैं तब बीमार हो पड़े हैं। पर ये कभी नहीं समझना है ऐसे कि ज्ञान में आने से हुआ है, बीमारी आदि तो होती रहती है, ये तो कर्म भोग है, किसी को किसको नहीं होती है बीमारी, वो तो है कलयुग है तो कर्म भोग है। अच्छा है विकर्म विनाश हो जाएंगे, हाय कर्म भोग कहना भी नहीं है, लेकिन बाबा कहते उसमें क्या समझो, अच्छा है हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है, थोड़ी बहुत बीमारी आई तो धर्मराज के डंडे से तो ये फिर भी अच्छा है। कर्म भोग चुक्तु करना है, ये तो महारोगी शरीर है, वैसे भी अंतिम शरीर, तमोप्रधान शरीर, 84वां जन्म का शरीर, महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती है। चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। अचानक हार्ट फेल, पता ही नहीं चलता, चलते चलते अचानक गिरे और गए, तो कितने, तो बाबा कहते हैं ऐसी पुरानी दुनिया को तो बिल्कुल ही एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं लौकिक दुनिया में, बच्चे देखते हैं, बच्चे लौकिक बाप के, वो देखते हैं कि बाप हमारा नया घर बना रहा है तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है ना, कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ। पिता को बोलेंगे बच्चे, पिताजी जल्दी जल्दी मकान बनाओ। हम भी इनको रोज कहते रहते कभी, और बाकी कितना है कितना है, देखो छत को खोल दिया, अभी बारिश आई तो सारा गीला हो जाएगा, जल्दी जल्दी करो ना तो नया बन जाए। तो बाबा भी कहते हैं, लौकिक में भी बच्चे कहते हैं जल्दी जल्दी मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा ये है बेहद का संन्यास, वो संन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का संन्यास कहा जाता है, और तुम संन्यास करते हो विकारों का। तो बाप कहते हैं देह से देह के जो भी तुम्हारे संबंध है सब को तोड़ माम एकम याद करो। ये दुनिया जो इन आँखों से देखते हो इनको भूलते जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, ये सब अब इस तीसरे नेत्र से क्या देख रहे हैं दुनिया का हाल, ये सब कब्रिस्तान हो जाना है। हाँ, अर्जुन को भी यही साक्षात्कार कराया ना, ये सब मरे पड़े, तो वो जैसे उसने देखा ये सब मरे पड़े हैं, उसको साक्षात्कार हो गया ये सब जैसे मर चुके हैं सारे कौरव, तो उसको तो और दुख हुआ कि मेरे कारण ये मरेंगे और मैं निमित्त बनूंगा इनको मारने के लिए। तो बाबा कहते ये तो मरे पड़े हैं, तुम केवल निमित्त बनो, इनको भूलो। तो बाबा कहते ये सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हैं तो विकार भी तेज हो गए। जितना ज्यादा धनवान होगा वो पैसे किस में बर्बाद करता है, विकारों में तो बर्बाद करता है ना धन, तो विकार भी तेज हो गए हैं। धन बहुत है तो विकार भी तेज हो जा गए हैं। काम विकार कितना तेज है, काम विकार बिगड़ रह ही नहीं सकते हैं। चार पांच वर्ष पवित्र रहे फिर लिखते हैं, फिर बाबा को लिखते हैं, चार पांच वर्ष तो पवित्र रहा, फिर बाबा को लिखते हैं बाबा आज इनको भूत लगा। हाँ, टीचर लिखती है बाबा ये चार पांच वर्ष तो इतना अच्छा चला, बहुत आगे बढ़ा, अभी इनको भूत लगा और काला मुंह कर दिया। अब वो खुद नहीं लिखेगा लेकिन टीचर तो लिखती है ना कि इसने काला मुंह कर दिया। कितना धक्का खाया, एकदम पांच मंजिल पांच मार से गिरे, काम विकार में गए माना पांचवे मंजिल से गिरे। पहले पहले है देह अभिमान, ऊपर से गिर ठक पुर्जा पुर्जा हो गया। पांचवे मंजिल से कोई गिरेगा तो आप सोचो क्या हालत होगी, सच गिर ठक पुर्जा पुर्जा हो गया, खलास हड गुड बिल्कुल ही टूट जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है, अब हड गुड टूट गए, चलो शरीर छोड़ा नहीं परंतु हड्डियां टूट गई तो अभी उनको जोड़ने में कितना टाइम लगता है, फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। ये है सबसे बड़ी चोट, काम विकार की चोट सबसे बड़ी चोट। इसलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, विकार को ही पतित पना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ, भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी को सूर्यवंशी कहेंगे, संपूर्ण निर्विकारी को सूर्यवंशी कहेंगे। भल रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती है, त्रेता युग में भी विकार होते नहीं है, परंतु कला तो कब हो ही जाती है ना, 16 से 14 कला हो जाते हैं। 1250 वर्ष कम हो गए तो वो दुनिया की ताकत तो कम हुई ना, इसलिए उनको सतो प्रदान, सत्युग को सतो प्रदान और त्रेता को सतो कहा जाता है। तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, यही चाहते हैं हम सभी कि हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने। अब इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है, इसमें केवल क्या कह, इसमें मुख से भी कुछ बोलना नहीं है, मुख से भी बोलने की भी तकलीफ बाबा नहीं देते, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है, इसमें ही बड़ी मेहनत है। बाबा के आगे तो सब महारथी हैं, इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है, विघ्न भी योग में बहुत पड़ते हैं, ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते हैं, योग में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। तो बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे हाँ क्या समझाते हैं बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को, बच्चे बाप से व पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं, बहुत अंडरलाइन, बाप से व पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं, रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठ जाएंगे। बाप से क्या रूठे, पढ़ाई से क्या रूठे, 21 जन्म तकदीर से ही रूठ जाएंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं, नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का, थोड़ी सी सेवा क्या की नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। मैंने इतनों को समझाया ये देह अहंकार आने से गिर पड़ते हैं, इसमें अहंकार तो नहीं आना चाहिए, काय का अहंकार, बाबा इतना निरहंकारी बच्चे क्या अहंकार दिखाते, इसमें अहंकार तो आना नहीं चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है, कितना निरहंकारी है और है कितनी बड़ी अथॉरिटी, शिव बाबा है कितनी बड़ी अथॉरिटी, परंतु जरा भी अहंकार नहीं। कहते भी हैं शिव बाबा, क्या कहते हैं, मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, ब्रह्मा बाबा का शरीर तो साधारण, तो साधारण घर में आता हूँ, साधारण तन में साधारण घर में आता हूँ, साहूकार के घर में थोड़ी आता हूँ। बाबा कोई ऐसे अरबपति तो थे नहीं, तो बाबा कहते साहूकार के घर में थोड़ी आता हूँ। तो अब बच्चों को जागना है, बाबा युक्तियां तो बड़ी अच्छी बदलाते रहते हैं, तुम बच्चों की ही देरी है, बाबा युक्तियां बताते लेकिन बच्चे पूरा अमल में नहीं लाते, तुम बच्चों की देरी है। ड्रामा अनुसार अर्जुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी है, जो बाबा चाहते हैं वो उतनी अवस्थाएं जोर नहीं भरी है, आगे चल जोर भरेगी, पापा को उम्मीद तो है ना कि आगे चल जोर भरेगी अवस्था। हम गवर्नमेंट को इत्तला करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ये अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर के तुमसे पूछेंगे कि थोड़े वर्षों के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा, ढेर आएंगे। ये प्रॉपर्टी आदि थोड़ी थोड़े समय के लिए, जो कुछ बना भी रहे हैं, मकान बना रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, मकान बना रहे रहने के लिए, बाबा कहते हैं ये जो भी प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो, ये हमारी बहुत हमारी ये सारी मिल्कियत है, ये तो नहीं, हम तो सब ट्रस्टी है, ये तो सब बाबा का है, हम सब ट्रस्टी है, ट्रस्ट के नाम पर है सब, किसी के पर्सनल नाम पर तो कुछ है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं इस प्रॉपर्टी को तुम प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो, तुम जानते हो ये तो थोड़े रोज के लिए है, ये मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं, अभी तो देखो कितने मकान बनाते गए हैं, तो भी सब हाउसफुल, सब जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, हाउसफुल हो रहा है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, हेड ऑफिस तो मधुबन है ना, आज तुम क्या करते हो कल क्या करेंगे, आज क्या करते हो और कल क्या करेंगे। यहाँ तुम तपस्या करते हो तो आज क्या कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, और कल फिर क्या होगा, कल दिल्ली वृंदावन में जाकर राज्य करेंगे। आज तपस्या कर रहे हो और कल दिल्ली वृंदावन हमें जाकर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है ये अच्छी रीति दिखाना है। कौन सा बाबा दिलवाड़ा मंदिर के लिए भी कहते हैं हमारा यादगार कैसे खड़ा है ये अच्छी रीति दिखाना है, नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर हमारा राज्य है। जो काम हम अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था, पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, द्वापर युग शुरू होते ही पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते, जितने भी प्राचीन से प्राचीन मंदिर देखेंगे वो सब शिव के मंदिर है, तो पहले तो सबसे पहले शिव के मंदिर ही बनाते हैं, पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी देलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं, इसको तो केवल 1000 साल हो गया, बाकी 2500 साल से मंदिर बनाते आए, तो ये तो देलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है, देलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है, पूरा हमारा यादगार है। तुम जानते हो ये स्थापना का यादगार है, देलवाड़ा मंदिर स्थापना का यादगार है, तपस्वी बैठे 108 तपस्वी, तो ये स्थापना का यादगार है। तो मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, ये सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियां निकालनी है। राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार, हाँ जिनका बहुत परिवार है, रावण का बहुत बड़ा परिवार है और राम का परिवार इतना छोटा है, तो राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार, रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है और राम का कितना छोटा परिवार है। गायन बिल्कुल राइट है, ये रामायण में आता है राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार, तो ये गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं, बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है, ये कौन समझा रहा है, बाबा कहते हैं ये भगवान समझा रहा है तो भी निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तो तुमको करना ही है, शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तुमको जरूर करना है। हाँ हाँ बाबा हाँ कहते हैं, शरीर निर्वाह कर्म करना है, लेकिन हाँ जो सर्विसेबल बच्चे हैं, पांडव वो तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। बाबा ने मधुबन को पांडव भवन कहा ना, तो बाबा कहते थे यहाँ पांडव चाहिए, हड्डी मेहनत करने वाले पांडव चाहिए, बहने तो जाके सेंटर पर रहती है। तो कई भाई कहेंगे अब मधुबन में सरेंडर हो जाए मधुबन में रहना, क्योंकि भाई ज्यादा है, बहने तो बहुत कम है यहाँ। तो क्यों चाहते हैं? क्योंकि बाबा की सेवा हम करें मधुबन में रह करके। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने देखो उसके लिए क्या शर्त रखी है, पांडव है वो तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। अभी तो कितने सेंटरों पर भी भाई समर्पित रूप में रहते हैं ना, बहुत रहते हैं, बाबा की सेवा सेंटरों पर करते हैं समर्पित रूप से। तो बाबा कहते हैं पांडव वो तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं, अगर समर्पित होते हैं तो बाबा की ये बेहद की गवर्नमेंट है, वो उनकी पालना करती है, उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। पर उसके लिए अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, अब अवस्था भी होनी चाहिए ना, खाली स्कूल सर्विस की तो बात ही नहीं ना, अवस्था भी तो इतनी अच्छी हो अगर समर्पित भी होते हैं तो। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है, ऐसे नहीं दुनिया भी याद आती रहे और यहाँ रह करके थोड़ी बहुत सर्विस की और दुनिया को याद करते रहते हैं। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। किसकी अवस्था मजबूत होगी? याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा उसकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रह तुम शरीर छोड़ते हो, सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है, मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, इसमें भी ऐसे होता है, पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं, अंत घड़ी आती है तो फिर सब कुछ भूल जाते हैं, अब हमको वापस घर जाना है, देह अभिमान छूटता जाता है। पिछाड़ी में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए, खुशी से छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख, बस हर्षित मुख, हम कहाँ जा रहे हैं ऐसी अवस्था जब होगी, हम कहाँ जा रहे हैं बाबा के पास जा रहे हैं, ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है, शांति की करंट है, कोई भी आते हैं तो कहते हैं ना, मधुबन के वो द्वार से अंदर आते हैं तो क्या कहते हैं, यहाँ तो बहुत शांति है, ये है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है, वैसे भी शरीर आत्मा छोड़ती है, डिटैच हो गई तो उस समय तो सन्नाटा हो ही जाता है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है तो तुम भी देही अभिमानी बनते हो, चलते फिरते देही अभिमानी, तो उसमें भी तो सन्नाटा छा जाना चाहिए। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है, हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं, कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते, वो लोग हठ योग से क्या क्या नहीं करते हैं। तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांत है, वो हठ योग से आज बाबा कहते चलो शांति में रहते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है। यहाँ हम आए हैं पाठ बजाने, अब वापिस घर जाना है, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को भी याद करो। बाप को याद करने से क्या होगा? बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। तो बाप कहते हैं मुझे भी घर में याद करो। कहाँ याद करो? घर में याद करो। यहाँ तो मैं टेम्पररी आता हूँ, हाँ, कई बार ऐसे होता था ना, अभी अव्यक्त बाप दादा यहाँ आए हुए हैं, सारी सारी रात बैठते हैं, तो बच्चे भी जागते थे, तो परंतु चलो थोड़ा गए, थोड़ा सैर करके आए, क्योंकि बाबा तो अलग अलग ग्रुप से मिलते थे, तो कई जाकर के बाबा के कमरे में बैठते थे। यहाँ बाप दादा आए हुए हैं और वो बाबा के कमरे में बैठते थे, तो कई पूछते थे अभी बाबा को आप कहाँ याद कर रहे हो, ओम शांति भवन में याद कर रहे हो या परम धाम में याद कर रहे हो? तो कहाँ याद करेंगे, ओम शांति भवन में याद करेंगे या बाबा के कमरे में बैठे हो तो परम धाम में याद करेंगे? देखो बाबा कहते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए। भले बाप दादा यहाँ सामने है, लेकिन जब चलते फिरते हैं तो याद तो परम धाम में करना है, बाबा की याद में। हाँ, शांति धाम में टिकनी चाहिए बुद्धि। घर का भी वर्षा लेना है ना, घर का भी वर्षा लेना है, परम सुख धाम का तो वर्षा लेना ही है, वो भी हमारा वर्षा है परम धाम में जाना। घर का भी वर्षा लेना है, वो है आत्माओं का घर और ये है जीव आत्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो, परम धाम को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे, ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर, सदा बाबा को देखो। ऑलवेज सी फादर, तुम जानते हो बाप ने क्या किया, सब कुछ माताओं को दे दिया। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा तुम्हारी जितनी भी चल अचल प्रॉपर्टी जो कुछ भी है सब माताओं को विल कर दो। और शिव और ब्रह्मा बाबा ने जरा भी नहीं सोचा कि क्या होगा। शिव बाबा ने कहा माना, शिव बाबा ने कहा भगवान ने कहा है तो मैं करूंगा। लौकिक में भी बाबा ऐसे ही थे, गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा। इतनी बड़ी बिजनेस थी बाबा की, अचानक गुरु ने बाबा को बुला लिया, हाँ बच्चे या आओ, गुरु ने बुलाया तो अपना सब कुछ छोड़ करके गुरु के पास जाता था। लोग कहते थे इतना काम है आप छोड़ के गुरु के पास जा रहे हो, तो कहा नहीं, गुरु का बुलावा काल का बुलावा, गुरु ने जो कहा वो मुझे करना है। अब जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, शिव बाबा ने उनको कहा अभी ये सब माताओं के हवाले कर दो, तो जरा भी बाबा ने सोचा नहीं क्या होगा, सब माताओं के नाम पर विल कर दिया। तो बाबा कहते हैं उसने ही ऑलवेज सी फादर, तुम जानते हो बाप ने क्या किया, सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरों ने फॉलो किया, कई फैमिलीज की फैमिलीज ना, परिवार के परिवार आ गए, स्वाहा हो गए, परंतु फिर जब टिक भी सके ना, उस समय तो स्वा हो गए, लेकिन फिर बाबा कहते टिक भी सके ना, ड्रामा अनुसार भट्टी भी बननी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ, अब 14 साल वहां ही फिर रहे, कराची में हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ, तुम्हारी भट्टी पहले शुरू ही हुई पाकिस्तान में, क्योंकि 37 में गए तो वहां पर कराची में चले गए, तो वहां वैसे भट्टी शुरू हुई और फिर 1947 में फिर पाकिस्तान बन गया वो, तो हुई पर तो भट्टी तुम्हारी शुरू हुई पाकिस्तान में। तुमने नदी को क्रॉस किया, हैदराबाद से कराची आ गए तो बीच में नदी आती थी, वो नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है कि जमुना पार ले गया ना उनको, तो कैसे वासुदेव उनको जमुना पार ले गया छोटे बच्चे कृष्ण को, तो कहाँ पर मथुरा से गोकुल में ले गया। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी भट्टी पहले शुरू ही हुई पाकिस्तान में, तुमने नदी को क्रॉस किया, शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है, प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना। संकल्प पहले प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना, फिर कल्प बाद तुम ही सुनेंगे। जो बाबा ज्ञान देते कल्प के बाद भी तुम ही सुनेंगे। अब बाप कहते हैं, हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल, धंधा आदि भल करो परंतु हियर नो ईविल। बाप कहते हैं, हर बात में श्री मत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें, तो बाबा सब बता देंगे। वैसे तो मुरली में तो बाबा बहुत श्रीमत देते हैं, फिर भी कोई ऐसी बात है तो बड़ों से पूछो, तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ। तुम डरते क्यों हो? कदम कदम पर पूछना है। बड़ों से पूछो, बाबा के कमरे में जाकर बाबा से बातें करो, झोपड़ी में जाकर बाबा को लिख के दो, देखो बाबा आपको कैसे वाइब्रेशंस देंगे, बाबा आपको प्रेरणा देंगे। तुम डरते क्यों हो? कदम कदम पर पूछना है। श्री मत पर चलने से कदम कदम में पदम है। अंडरलाइन, श्री मत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है श्री मत पर, कदम तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है, बाबा कहते हैं उसमें पदम है। अगर श्री मत पर है तो उसमें पदम है। तो कितनी कमाई हो रही है, कदम कदम पर कितनी कमाई हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तारना के लिए मुख्य सार, पहला है, विजय माला में पिरोने के लिए क्या करना होगा? विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह से न्यारा होने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है। इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरा, टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। वरदान, मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। कौन सा कंबाइंड रूप है? पहले आत्मा और शरीर, ये जुड़े हुए ना, आत्मा और शरीर। तो पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप की को स्मृति में रखो। उसमें क्या सोचो? शरीर रचना है और आत्मा रचयिता है। इसमें मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मैं आत्मा मालिक रचयिता इस शरीर रूपी रचना का हूँ। तो मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे। शरीर की इंद्रियों का मालिक, मन का भी मालिक, हाँ, तो हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे। शरीर को चलाने वाले होंगे। फिर दूसरा कौन सा जोड़ना, कौन सा जोड़? दूसरा, बाप और बच्चा। पहले आत्मा और शरीर जुड़े हुए, फिर बाप और बच्चा यानी शिव शक्ति। तो शिव शक्ति बाप और बच्चा शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे। मैं शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ तो इस कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर सकेंगे। स्लोगन, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। यह अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। वो कैसे करेंगे? पाप कटेश्वर व पाप हरणी, पाप कटेश्वर या पाप हरणी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप हो। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद न हो, स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। हर वक्त कंबाइंड स्नेह और शक्ति। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज से तो नीचे भट्ठी शुरू हो रही है। जो भट्ठी में आए हैं आज से सवेरे सवेरे, आई है कोई? हाथ उठाई।